संतप्त मानस शांत हो। एक सौ बयालीसवां कलश समय सार परमागम, इसमें 204 पेज हैं और उसमें 323 पेज हैं। समय सार में 323 पेज हैं, समय सार अनुशीलन में 207 पेज हैं। पढ़ो क्लिश्यन्तं स्वयमे निष्कर्ष के रूप में ये कह रहे हैं, चाहे तुम जैनोत्तरों के यहां मान्य जो तप है, पंचाग्नि तप खासकर माना जाता है, पंचाग्नि तप उसे बोलते हैं कि पांचों तरफ अग्नि जला लेते हैं। नीचे अग्नि जला ली और उस पर एक वो लगाकर ऊपर हांडी रखने का होता है ना, ऐसा छींका लगा के उस पर बैठते हैं और चारों तरफ आग जलाते हैं। तो पांचों तरफ अग्नि हो उसे बोलते पंचाग्नि। तो पंचाग्नि तप आदि कोई तप करो, कैसे भी करो, और चाहे जैन मत के द्वारा मान्य अनुवृत महाव्रत आदि पालन करके और जो उपवासादी रूप तप करते हैं बाही में, चाहे वो करो। दोनों को एक लाइन में खड़ा कर दिया। ये बहुत अच्छा नहीं लगा भाई, ठीक है तुम कहो लेकिन थोड़ा फर्क तो रखो इन दोनों में। तो जैन मान्यता के अनुसार जो 12 तप हैं और जो महाव्रताधिक हैं उनको कुछ तो मान्यता दो, थोड़े बहुत तो हम नजदीक आए मोक्ष के। तो कहते नहीं, देखो क्लिश्यन्ताम् स्वयमेव दुष्करतरैः मोक्षोन्मुखैः कर्मभिः, कि अपने ऊपर दुष्करतर ऐसे जिसमें बहुत तकलीफ हो, वो लोगों ने ना क्या समझ लिया कि तकलीफ को तप मान लिया। एक पैर के बल खड़े रहेंगे है ना, और हम सब 8 दिन से खड़े हैं, 10 दिन से खड़े हैं, अब वो मालूम क्या करते हैं, दो वो लाख होते हैं जैसे अपन वो व्यायाम करने के होते हैं ना, ऐसे उस पर खड़े रहकर ऐसे टिके रहते हैं, एक पैर ऊंचा टांग किए रहते हैं और बस तमाम देर तब सजा हो रही। रात में भी वहीं खड़े खड़े सोते हैं, 7 दिन हो गए साहब एक तब पैर से तब से खड़े हुए। तो दुष्कर तरई माने दूसरों के द्वारा करना बहुत कठिन हो, दुष्कर हो, कर ही नहीं पाए ऐसी बात नहीं है, कर तो लें लेकिन बहुत कठिनाई से करें। और महाव्रत तपो भारेण भगनाश्चरम, और चाहे महाव्रत धारण किए 1000 वर्ष हो गए, 1000 वर्ष की आयु होती थी ना, और भगनाश्चरम भग्न हो गए हैं मतलब शरीर सूख गया है, हाथ पैर हो गए हैं, सब ऐसी हालत हो गई है कि देखते ही नहीं बनती है। ऐसी हालत हो जाए चाहे वो जैनों के द्वारा कहे गए सब तपश्चरणादि करें, चाहे जैनों तरों के द्वारा कहे गए तपश्चरणादि करें, लेकिन उससे जो निरामय पद है, आमय माने होता रोग, बीमारियां, तकलीफें, कि जो आमय से रहित निरामय पद है, जो मोक्ष पद है, वो इससे मिलने वाला नहीं है। वो तो स्वयं संवेद्यमानम स्वयं, स्वयं का अनुभव करेंगे उससे ही मिलेगा, क्योंकि ज्ञान हमें प्राप्ति केवल ज्ञान की करनी है, तो ज्ञान ज्ञान गुण के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। ज्ञानम ज्ञान गुणम बिना कथमपि प्राप्ते थमंती नहीं, मैंने किसी भी प्रकार प्राप्त करने में थमंती मैंने समर्थ नहीं है। ज्ञान तो ज्ञान के तरीके से ही प्राप्त होगा। ऐसे ये बात जो अपने यहां कही है ना, ऐसी ही बात वेदांत में भी बहुत कहा है। उनके यहां भी बहुत से छंद ऐसे आते हैं जिसमें ये बाहर क्रिया कांड का निषेध किया गया है। आप ये वेद वेदांत का अर्थ समझते हैं क्या चीज है? ये जो वेदों चार उनके यहां वेद हैं, तो वेदों में जितना भी वर्णन है वो अधिकांश क्रियाकांड का है। जैसे अपन कर्म मीमांसा बोलते हैं ना, उनके पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा नाम से मीमांसक के दो वेद हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। तो पूर्व मीमांसक वे लोग हैं जो उन्हें वेदों में जो बातें वर्णन की हैं उनको पालन करके जगत के सामने रखते हैं, उसमें क्रियाकांड ही ज्यादा है। तो क्रियाकांड ही जो पंडित हैं वे पूर्व मीमांसक हैं। पूर्व माने पहले के वेदों के, वेदों के समय से वे चले आए हैं, प्राचीन तो वो ही हैं। मीमांसक माने विचारक। ये सरिता नामक एक मासिक पत्रिका निकलती है ना, इसने पहले वेदों की बहुत खिल्ली उड़ाई और हर अंक में 5-7 पेज वेदों में जो लिखा है उसके वो छापता था हिंदी में। बस अब हमने कोई ज्यादा वेद भी पढ़े नहीं हैं, लेकिन उस सरिता के माध्यम से हमने वो वेदों की बातें पढ़ी थोड़ी बहुत। तो उसने लगा, हे अग्नि देवता, तू मेरा ऐसा कर दे, मेरा ऐसा कर दे, मेरी सारी बीमारियां दूर कर दे, मेरी पेट जठराग्नि बढ़ा दे, हे ब्रह्मा तू ये कर दे। मांगों के अलावा कुछ नहीं है उसमें। और अग्नि भी देवता हो, वायु भी देवता हो, वनस्पति भी देवता, सब एक केंद्रीय देवता। वास्तव में मैंने प्रकृति से जो हमारा जो संबंध है ना, जिसके बिना हमारा जीवन नहीं चलता है, उन सबको उनने देवता बना दिया और सबसे निरंतर प्रार्थना की कि हमारे जीवन को अच्छी तरह से चलाओ। ऐसी बातें उसमें ज्यादा हैं। मैं ज्यादा इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैंने खुद स्वयं ज्यादा वेदों को नहीं पढ़ा, जो पढ़ा उसमें ऐसी बातें थी हैं। वो निकाल निकाल के उसी तरह की बातें बताते होंगे। अब ये आयुर्वेद, अब ये तो चार वेदों में तो नहीं है, लेकिन आयुर्वेद भी वेद लिखा ना हमने, तो उसमें भी बस यही था ना, शरीर कैसे स्वस्थ रहे, प्राणायाम वगैरह है, तो अभी शरीर कैसे स्वस्थ रहे। तो इसको बोलते पूर्व मीमांसा वेदों के। फिर उत्तर मीमांसा माने वेदांत। अब वेदांत क्या है? वेदों के अंत में जो बात आई, माने वेदोत्तर काल में जब बहुत अधिक क्रियाकांड पड़ा, तो उनके यहां भी ऐसे विद्वान तैयार हुए कि जो कहने लगे कोई क्रियाकांड से कुछ नहीं होगा, तो हमें आत्मा परमात्मा समझना पड़ेगा। और वो ब्रह्म जो है ना, उस ब्रह्म स्वरूप अपने आप ब्रह्म माने त्रिकाली दुर् भगवान आत्मा, और उनके भी एक ब्रह्म है, वो ब्रह्मोपासना करनी पड़ेगी। तो उसमें भी ये ब्रह्मा विष्णु महेश की उपासना नहीं, ब्रह्म की। जैसे अपन कहते देवशास गुरु में भी राग होगा, जैसे उनके भी कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश में रहोगे तो ये तुम्हें राग होगा, यदि तुमको बिल्कुल असली उपासना करना है तो ब्रह्म की करो। वे वेदांती लोग हैं, पर ये शंकराचार्य वगैरह वेदांत के आचार्य हैं, वेदों के आचार्य और रहे होंगे, वेदांत के आचार्य हैं। तो वेदांत में भी है, वेदांत में है, तो तो अपना समझ लो मोटा मोटा जो अपना व्यवहार नए है, जो क्रियाकांड है, पूजा पाठ वगैरह ये सब, ये सब वहां वेदों पूर्व मीमांसा में है, और अपने यहां जो शुद्ध निश्चय नए है उसी टाइप का वहां पर वेदांत में है। तो गीता गीता है वो वेदांत का सार है, इसीलिए उसमें आत्मा अजर है, अमर है, मारी से मरता नहीं जीनी होता है, वो सब वेदांत की बातें हैं उसमें जो लिखी हुई हैं। तो वेद और वेदांत। अब उसके बाद उपनिषद आए, तो ये उपनिषद क्या है, तो वेदांत के जो सिद्धांत थे उनको कथा कहानियों के माध्यम से जनता तक पहुंचाना है। ये उपनिषदों में भी कथा कहानियां बहुत हैं, और उसमें ये बात बताई है कि ये क्रियाकांड बेकार है और ज्ञान कांड से ही ज्ञान से ही काम चलेगा। इसलिए लोग कहते हैं वेदांत हमारे जैन धर्म के बहुत अध्यात्म के अनुकूल है। उसमें ये कहानी आती है जिसके लिए मैंने तुमको इतनी रामायण सुनाई, एक गुरुजी थे जो अपने आश्रम चलाते थे, और पुराने जमाने में एक एक गुरु हुआ करते थे, वे अपना आश्रम चलाते थे, और किसी के यहां 200 शिष्य, किसी यहां 500 शिष्य जो पढ़ते थे, और उनकी वही व्यवस्था जुटाते थे, उनकी व्यवस्था और कुछ नहीं थी, वो आश्रम में के वो रहते थे, वे विद्यार्थी ही बिल्कुल साधु जैसे वेश में रहते थे, लंगोटी लगा के चंद्रा उड़ करके ऐसे ही रहते थे जैसे अपने छुल्लक टाइप के होते हैं, पीले वस्त्र पहन के सिर घोटाकर, और बेई नगर में भिक्षा मांगने जाते थे, और भिक्षा ला करके खुद अपने आजीविका की व्यवस्था करते थे और अपने गुरुजी के लिए भी ले आते थे क्या, और गुरुजी की पत्नियां भी हुआ करती हैं, गुरु पत्नी, और उनके बाल बच्चे भी हुआ करते थे। ऐसे जितने जो आते हैं ऋषियों के नाम, गौतम ऋषि का आश्रम, फलाने ऋषि का आश्रम, वाल्मीकि ऋषि का आश्रम, कणाद ऋषि का आश्रम, तो ये आश्रम थे, और उन्होंने वे विद्वान वे वेदांत के आचार्यों के अलग थे, क्रियाकांड के आचार्यों के अलग थे। अब ये गवर्नमेंट ने भी ये क्रियाकांड का भी कोर्स में रख दिया है, ये जो पूजा पाठ कराते हैं ना, शादी विवाह कराते हैं पंडित ब्राह्मण लोग, तो उनको भी सिखाने का यूनिवर्सिटी डिग्री देगी और पढ़ाई पढ़ाएगी यूनिवर्सिटी में क्रियाकांड की, लेकिन वो वेदांत की तो नहीं रखी, क्रियाकांड की रख दी, क्योंकि उसकी हरेक को जरूरत है, अपने बेटा बेटी की शादी करना है, हरेक को जरा संकट आता है देवी देवता के पास भागना है, पूजा पाठ कराना है, अब वो आवश्यकता हो गई। तो उसमें जो एक आचार्य थे उनके यहां बहुत शिष्य उनके पास पढ़ते थे, टॉप के प्रसिद्ध आचार्यों में थे, नाम शब्द मुझे ख्याल नहीं आ रहा, और उनका खुद विकला बेटा था, वो बिल्कुल नहीं पढ़ता था, वो तो गुरु जी का बेटा था ना, वो तो समझता है हम तो उत्तराधिकार में ही मिल जाएगा, हमें तो सब कुछ, हमें पढ़ने की क्या जरूरत है। तो उसके पिताजी उसे बहुत समझाते थे, बहुत समझाते थे, लेकिन वो कुछ भी ध्यान नहीं देता था। तो एक दिन उनको बहुत गुस्सा आया, किनको, पिताजी समझ लो चाहे गुरु जी समझ लो, तो उन्होंने जो शब्द उसमें लिखे हैं कहानी में संस्कृत में वो मैं आपको सुनाता हूं, क्या कहा उन्होंने, उन्होंने कह रहे मूर्ख तू बैल तो है नहीं जो गाड़ी में जोता जाएगा, तू गाय तो है नहीं जो दूध देगा, तू गधा तो है नहीं जो कुंवार की मिट्टी जंगल में से ढोके लाएगा, तू शूद्र तो है नहीं कि लेटरिन बाथरूम साफ करेगा, तू बनिया तो है नहीं कि दुकान खोल के बैठ जाएगा, तू छत्री तो है नहीं जो युद्ध में लड़ने चला जाएगा सिपाही बन जाएगा, अरे तू तो ब्राह्मण का बेटा है, तू नहीं पढ़ेगा तो तेरी क्या दुर्दशा होगी। बहुत बहुत मैंने लिखा है अत्यंत कठोर शब्दों में, और कठोर शब्द का जो व्याख्या है उन्होंने ये बताई इस तरह की, तेरी ड्यूटी क्या है, तुम कौन किस कुल में पैदा हुआ है, मेरे कुल में पैदा हुआ है, पढ़े बिना तेरा कोई रास्ता नहीं है, और तू कुछ नहीं कह सकता मानव बाकी के तुझे ने, तुझे ऐसा करना पड़ेगा। तो उसको चुभ गई, इतने कठोर शब्दों में उनने समझाया कि उसको चुभ गई। जब बात उसे चुभ गई तो वो घर से भाग गया और वहां पर चोटी पर गांठ खोल के प्रतिज्ञा कर ली कि पिताजी जब तक मैं विद्वान नहीं बन जाऊंगा तो मैं सकल नहीं दिखाऊंगा। वो भाग गया। मैंने क्या हुआ देखो, यहां ये बताया कि जो ज्ञान के निमित्त थे, जो विद्यालय था जहां हजारों लोग पढ़ते थे, हैं? वो उनके अत्यंत नजदीक आकर के उसी बात की शिक्षा दी कि तुम पढ़, तो उसी में से उसने वहां से छोड़ के भागने की सोची। और बनना तो विद्वान है, लेकिन मैं अब सकल तुम्हें तब दिखाऊंगा जब मैं विद्वान बन के आऊंगा। तुम समझते क्या हो? तो उन निमित्तों से दूर हो गया और जाकर के गंगा के किनारे वो प्रतिज्ञा कर ली कि मैं खाना तब खाऊंगा जब विद्वान बन जाऊंगा। ये बताइए वहां पर मैं ये ज्ञानम ज्ञान गुणम कदम अपि प्राप्ते छमंती नहीं, इसका अर्थ कर रहा हूं, गप नहीं लगा रहा हूं, है ना। अंतिम पंक्ति ज्ञानम ज्ञान गुणम बिना कथमपि प्राप्तम समन्ते नहीं, माने उसने सब जो ज्ञान के उपाय थे उन निमित्तों से दूर हो गया, जो पढ़ना उसकी पद्धति थी उस पद्धति से दूर हो गया, और बस मैं तो विद्वान बन जाऊंगा तब रोटी खाऊंगा, बैठ गया बदन लेकर के। और इतनी घोर तपस्या करी कि इंद्र का आसन कंपायमान हो गया। इंद्र का आसन तो कंपायमान अपने आप ही होता है, उसके बिना तो दुनिया में किसी का काम ही नहीं चलता है। लेकिन अपने अपने धर्म के हिसाब से हम अपने कंपाने की व्यवस्था हमने बना रखी है। ऐसा नहीं है कि भगवान का जन्म होता तभी इंद्र का आसन कपता है, कोई तपस्या करता है तो भी कप जाता है, और उसे डर लगता है कि मेरा पदना ले ले, इसके लिए उसे आगे भ्रष्ट करने का काम करता है वो इंद्र। उन धर्मों में भी अपने धर्म अपने में क्या बताते, वो खुद नहीं आता तो किसी देवताओं को भेज देता है परीक्षा करने। सनत कुमार चक्रवर्ती की परीक्षा करने भेज दिया था ना, और भी कहानी मिलेंगे कि जाके पता लगाओ सचमुच कैसा है। तो परीक्षा के नाम पर उसको कसौटी पर कसते हैं और वो तो वहां भ्रष्ट ही करना चाहते हैं, तो वो उनने भेजा, तो उसने आकर के देखा किया तो वो सब खाना जब खाऊंगा जब मैं विद्वान बन जाऊंगा। तो बहुत समझाया लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आया। वो तो मैं तो प्रतिज्ञा कर ली तो अभी पीढ़ी निभाऊंगा, जब फिर मेरा ये काम पूरा हो जाए तब आप पधारना, जो आप कहेंगे मैं करूंगा। तो ये बात तो मैं आपको, मैं अपनी प्रतिज्ञा तो नहीं तोड़ूंगा। क्यों अभिनंदन के देखो पंडित जी, हम अपना धर्म तो नहीं छोड़ेंगे यदि हम धर्म छुड़ाने बैठे हों। हमारा तो जो नियम है वो तो हम करेंगे, हम वो व्रत उपवास सब हम करेंगे। ठीक करो ना तो बेटा, सुनो ना तत्व की बात, वो छुड़वा करके हम सुनाना चाहें तो किसी कीमत पर वो सुनेगा नहीं। अब कितने दिन तक ढो पाएगा वो अलग बात है। क्यों? तो वो नहीं माना, नहीं माना, सो नहीं माना। तो उसने इंद्र ने एक वृद्ध ब्राह्मण का भेष बनाया और वेश बना करके वहीं आकर के जो नदी के किनारे की बालू थी, बालू तो समझते हैं रेत, कैसी रेत जिसमें चिकनाई नहीं होती है ना, उस बालू को ऐसे ले लेकर के हाथ से उठा उठा करके नदी में फेंकता था। बहुत देर तक फेंकता, दो घंटा चार घंटा निकल गया, वो देख रहा था वहीं बैठे बैठे। तो उसने कहा भैया तुम क्या कर रहे हो जी, कि तुम क्या कर रहे हो, कि हम तो विद्वान बनने के लिए तपश्चर्या कर रहे हैं, कि तुम क्या कर रहे हो, कि मैं इस गंगा नदी का पुल बना रहा हूं क्योंकि मुझे उस पार जाना है। तो उन्होंने कहा मूर्ख, ऐसे पुल बनता है, तुम एक मुट्ठी रेत फेंकता है तो वो नदी की तेज धारा उसे बहा ले जाती है, ऐसे पुल नहीं बनते, क्योंकि ऐसे विद्वान नहीं बनते जैसे तुम खाने खाऊंगा नहीं बनूंगा। फिर उसने जब उसकी बात सुननी शुरू की तो उसके फिर उसने मानी और फिर उसने अध्ययन किया, अध्ययन करके कहते वो अपने बाप से भी बड़ा विद्वान बना। ऐसी कहानियां, मतलब ये वेदांत की कहानियां हैं, उपनिषदों में आई हैं जो, माने ज्ञान तो ज्ञान के तरीके से अर्जित किया जाएगा, आत्मज्ञान आत्मज्ञान के तरीके से अर्जित किया जाएगा। इस क्रिया कांड से नाम मिले यह आत्म अभिराम और ज्ञान कला से सहज ही प्रगट आत्मा राम। आगे जाएगा इसी ये वही प्रकरण अब शुरू हो रहा है कि ज्ञान गुण के बिना उसकी उपलब्धि तेरे को नहीं होगी। देखो अब अपने पद्यानुवाद पढ़ते हैं तो मेरे ख्याल से आपको पूरा समझ में आएगा, आए ही होगा वैसे। पंचाग्नि तप बहुत ही सरल और साफ है ना, अभी कुछ समझाने जैसा है नहीं, लेकिन कुछ समझाने जैसा है जो आपको वैसे ख्याल नहीं आएगा। ये पंचाग्नि तपया महाव्रत ऐसा क्यों लिखा? ऊपर तो पंचाग्नि तप कलश में उल्लेख नहीं है, सिर्फ पंचाग्नि तप कह करके इस जैनों तरों की बात कही। जैन धर्म के विरोधी पंचाग्नि आदि तप करके ज्ञान प्राप्त करना चाहें तो उन्हें प्राप्त नहीं होगा, मतलब ये बात जैने तरों की है। सब इस तरफ संकेत करने के लिए उनके यहां पंचाग्नि तप प्रसिद्ध है, इसलिए पंचाग्नि शब्द का प्रयोग किया। वो ये बताने के लिए कि हम जे जैने तरों में होने वाले जो तप हैं उनकी बात कर रहे हैं। और महाव्रत, महाव्रत जो शब्द है वो जैनियों का है, तो महाव्रत लिखा। महाव्रत तो मूल कलश में है भी, लेकिन पंचाग्नि नहीं है, उसके लिए क्या है? दुष्कर तरई कर्म भी ये शब्द है, दुष्कर तर कर्म। तो हमने उसका एक उल्लेख कर दिया जो दुष्कर माना जाता है उनके यहां, बहुत कठिन माना जाता है कि पंचाग्नि तप या महाव्रत कुछ भी करो सिद्धि नहीं। अब ये तो आचार्यों की बात है, अमृतचंद का कलश है, इसमें ना तो स्वामी जी की है ना किसी विद्वान की है कि आप आलोचना कर रहे हैं, आप आलोचना कर रहे हैं, इसकी आलोचना कर रहे हैं। पंचाग्नि तप, इसलिए तो मैं कहता हूं कि इसको सीधा इसे पढ़ो, जब जब ऐसा प्रकरण आए क्या कि आपको ऐसे कहने की आवश्यकता पड़े तो अपनी जबान से मत बोलो, अपनी तरफ से कुछ भाषा मत प्रयोग करो। इस संस्कृत के छंद, हिंदी के जो पद हैं बड़े बड़े प्रतिष्ठित विद्वानों के, उनको प्रस्तुत करो तो वो समाज में कम से कम स्वीकृत नहीं होंगे तो सुन तो लिए जाएंगे क्या। और आज भी पद की गद्य से इतनी अधिक प्रतिष्ठा है, गद्य में आप कुछ भी कहते रहो वो लोगों को गप्पें लगती हैं, और पद्य में था तुम रहीम का दोहा बोल दो, मुसलमान था चाहे तुलसी का दोहा बोल दो तो वे उनके गले उतर जाती है। पद्य के प्रति ऐसी आस्था है, वह संस्कृत का कोई श्लोक बोल दो, वो चाहे वो किसी ने भी बनाया हो तो उसके प्रति हाँ हाँ बात तो है, बात तो है, सुनिए ना। इसलिए वो पदों का जो बात हमारी हमारा जो व्यक्तित्व है उसके माध्यम से लोगों के गले नहीं उतरे तो उसमें इसका इनका प्रयोग करना बहुत जरूरी है, है ना। क्लश पंचाग्नि तपया महाव्रत कुछ भी करो सिद्धि नहीं, जाने बिना निज आत्मा जिनवर कहें सब व्यर्थ है। मोक्ष पद जो ज्ञान पद है, ज्ञान पद माने मोक्ष पद है, मोक्ष का होता है ज्ञान का हो, आत्मा का होता है वह ज्ञान से ही प्राप्त हो। जान बूझ करके यहां पर मोक्ष पद को ज्ञान मोक्षमय जो ज्ञान पद, क्योंकि ये सीधा मिलान करना है ना, ज्ञान की चीज तो ज्ञान से ही मिलेगी, है ना, पैसे से नहीं मिलेगी। जो पैसे से प्राप्त होने वाली चीज है वो पैसे से मिलेगी। ज्ञान मय जो मोक्ष मय जो ज्ञान पद वह ज्ञान से ही प्राप्त हो, निज ज्ञान गुण के बिना उसको कोई पा सकता नहीं। अभी गुरुदेव श्री का तो पढ़ लेना, इसमें वो तो उन्होंने जो किया है, बनारसी दास जी ने इसको अच्छे रूप में प्रस्तुत किया है, उन्होंने एक नहीं कई छंद लिखे हैं इसके बिना, ये चार पांच मैंने दिए हैं और होंगे तो उनके तो बहुत ज्यादा होंगे, और ऐसे ही जो छंद थे कि जिन छंदों को आगरा की गलियों में लोग आज के सिनेमा के गानों जैसे गाया करते थे, गुनगुनाया करते थे, और सभी धर्मों में चलते थे। कोई क्रूर कष्ट सहे तप आया होगा अर्थ समझ में, है ना, मोटा मोटा तो आ ही गया, क्योंकि ये क्या बात है कहना चाहते हैं वो, क्योंकि अपन पहले आए हैं। लेकिन इनमें भी शुरू की दो पंक्तियां अजैनियों के लिए, अजैनियों के द्वारा जो किया जाता है तप के नाम पर, और दूसरी दो पंक्तियां फिर जैनियों के में जो तप के नाम पर किया जाता है, और तीसरी दो पंक्तियों में वे कैसे लोग हैं दोनों, और चौथी दो पंक्तियों में सही बात क्या है, उन्होंने कितना व्यवस्थित क्रम है। कोई क्रूर कष्ट सहें, क्रूर कष्ट भयंकर बहुत तकलीफ ये दुनिया बर्दाश्त नहीं कर सके, तपसों शरीर दहें, वही पंचाग्नि तप आ गया ना, शरीर जलता कैसे है, तपसों शरीर दहें, अपने आप ही धूप में बैठ जाते हैं, हमें तो कर्म खेलेंगे, तो जब मैं कहता हूं कि धूप से भैया कर्म नहीं पसीना खिलता है, चलो हंसते हैं क्या कह रहे हैं, मैंने कई जगह बताया है कि धूप में बैठने का मतलब तो क्या है, है? कंदरा में गिरी में उस आजू पढ़ा रहे थे ना संजीव गोधा, गिरी कंदरा में बास करते हैं जो आ रहा था सब, उसके सबके प्रयोजन है, उससे कोई कर्म खर जाएंगे ऐसा नहीं है। धूम्रपान करें अधो मुख होए के झूले हैं, ये धूम्रकार करना वो तप मानते हैं भाई साहब, क्योंकि उन्हें वो शंकर भगवान गांजा वो पीते थे, तो बहुत तकलीफ होती है अंदर, खांसी होती है, जे होती है, वो होती है ना, तो धूम्रपान को कोई शौक से नहीं पीते जो हम शौक से पीने लग गए हैं, वो तपस्या करने के लिए, वो उनके तपस्या के तरीके थे। अब ये दूसरा, कोई महाव्रत गहे और क्रिया में मगन रहे, बहे मुनि भार, मुनि के पद का भार को ढोते हैं वे, मुनि भार उसे मतलब मुनि पद के क्रिया कांड को बोझा बता रहे हैं जी, बोझा कैसे प्यार कैसे पूले हैं, ये क्या है, ये दिक्कत है, ये प्यार कैसे पूले हैं, ये क्या है, ये देखो जब मुनिराजों की संगति में जो आप लोग रहते होंगे, तो सर्दियों के दिनों में जब मुनिराज सोते हैं तो कुछ अलग टाइप की जो घास है वो वहां उन्हें बिछा दी जाती है, तो उसे प्यार बोलते हैं बुंदेलखंड में, प्यार वो ये प्यार है वो, हाँ, कोदे का कुटकी का जो छोटे छोटे अनाज होते हैं ना, उनका जो घास मुलायम होता है चुभता नहीं है और उसमें गर्मी होती है, जैसे मतलब गेहूं का तो वैसे कड़क होगा ना, मक्की का कड़क होगा, ज्वार का कड़क होगा, लेकिन कोदो कुटकी होती है, समझे ना, उनके जो छोटे छोटे पौधे होते हैं और मुलायम होता है उसे प्यार बोलते हैं, और वो अपने घरों में भी वो उसको प्रयोग करते हैं, हमारे घर में भी रात को पहले प्यार बिछा देते थे, उसके ऊपर बिस्तर लगाते थे, उसमें सोते थे। हम और दादा जब सबसे पहले पढ़ने गए थे पपोरा में, वहां दिवाली के बाद, ये हमारा उत्तम छोटा भाई है ना, ये कुंवार के महीने में पैदा हुआ था और उसके सवा महीने बाद हमारे पिताजी हमें छोड़ने के लिए पढ़ने के लिए गए थे। सवा महीने तो जाते नहीं ना, तो उसके बाद में हम वहां गए और हमें भर्ती करके आ गए वो, और आ गए फिर हमें वहां से हमको वो सर्दी लग गई। सर्दी लग गई तो जुकाम सर्दी हो गया तो तबीयत खराब हो गई, तो मैं चिट्ठी लिख दी फटाफट कि हमारी तबीयत खराब हो गई, ये हो गई हो गई। तो छोड़ के तो आए थे, 15 दिन भी नहीं हुए थे, और बेचारे फिर भी दौड़े दौड़े गए। उस वक्त का ऐसे जाना नहीं था कि फटाफट टिकट कटाई और चले गए, वो गांव से हमको बैलगाड़ी से लेके गए थे। 2 दिन रस्ते में सोए, तीसरे दिन कहां पपोरा में, तीसरे दिन पहुंचे थे। एक रात ललितपुर में सोए, दूसरी रात महरौनी में सोए, फिर टीकमगढ़ पहुंचे, फिर पपोरा जी पहुंचे। अब फिर द्वारा बेचारे वो बिनी बैलगाड़ी के अकेले ही जैसे भी धक्के खाते खाते और वहां पहुंच गए। वो पहुंच गए तो उन्होंने देखा कि सर्दी लग गई और कुछ नहीं है, क्योंकि जंगल में था ना वो, और कपड़ों में वैसे कपड़े में तो सर्दी लग गई। तो उन्होंने गांव में से प्यार इकट्ठा किया, आपका काय को सुना रहे, और प्यार के वैसे तो रहे नहीं, भट्टी में गद्दे बनाए और दोनों हमारे पलंगों पर वे गद्दे तक पलंग के तखत उनपे बुक बिठा दिए, और बाद में हमारा बिस्तर बिछाया कि बेटा इस पे सोना तो तुमको सर्दी नहीं लगेगी। तो वो घटना इतनी साधारण घटना नहीं है जो आप कहते क्यों सुना रहे, ये प्यार कैसे पूले हैं, ये आए तो वो याद आए बिना रहती नहीं है क्या, समझ गए ना। कहेंगे फिरे जग माही ज्यो, मैंने अभी नहीं, प्यार जैसे पूले बहे मुनि भार पे, प्यार कैसे पूले हैं, मैंने वो प्यार किसी काम का नहीं है, उसे कोई पशु खाते भी नहीं है। जो घास का काम करते हैं ना, तो पशु खाते हुए तो कोई प्यार देवे ही नहीं हमें, तो ऐसा निरर्थक है वो। वो पूला पूला माने क्या, वो जो घास को इकट्ठा करके बांध देते हैं ना, उसे क्या पूला बोलते ना, समझ गए ना। तो ये घास के, अच्छी घास के पूले नहीं है, प्यार के पूले हैं। कौन, अब समझ लो कौन सी उपमा दी है, किनको दी है, अब आसमाना। क्रियाकांडी मुनिराजों के लिए जो आत्मा के ज्ञान से हीन हैं, उन्हें प्यार कैसे पूले हैं, ठीक है ना। और कैसे हैं वे, फिरे जग माही, दुनिया में घूमते रहते हैं, कैसे घूमते रहते हैं, बयार के बघूले हैं, ज्यो बयार के बघूले हैं। अब ये भी क्या है, ये जो वो खूब आंधी चलती है ना, तो आपने देखा होगा कि कभी कभी हवा ऐसी तिरछी चलती है तो जमीन में से ऐसी धूल ऐसी उड़ती है, उसमें अत्य भी साधन होते हैं। अब वो ऐसे 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 कितना, अब गांव में तो रहे ही नहीं हो तो देखा गया, तुम लोग ये सब गांव से ही आते हैं, इन सबने देखे होंगे, तुमने नहीं देखे होंगे दिलीप भाई, देखे बघूला, उन्हें बघूला बोलते हैं, ऐसे कहते देवता है, देवता घूम रहे, देवता घूम रहे, डर उसे दूर रहो, उसे दूर रहो, वो भूत लग जाएगा, वो बघूले। असल में वो धूल ऐसी उड़ती है कि उसमें जो कोई फंस जाए तो वो बीमार हुए बिना रहता नहीं, हो जाएगा कुछ ना कुछ एलर्जी हो जाएगी, तो उसे डरते हैं। तो कहते वो ऐसे घूमते रहते हैं जैसे बयार के बघूले, ये कहां जाएंगे कोई ठिकाना नहीं है, जैसी हवा चलेगी तैसे हवा चले जाएंगे, लेकिन इनका कोई ठिकाना नहीं है, मतलब कहां जाएंगे, घूमते रहते हैं, कौन बयार के बघूले जैसे घूमते रहते हैं, प्यार के पूले जैसे रहते हैं। कितनी कितनी बढ़िया बढ़िया उपमाएं ये बनारसी दास जी ने अपनी तरफ से निकाली है ना, देखो इत्यादि के जीवत के महाव्रत गए, क्रिया में मंगन रहे, बहे मुनि भार पे प्यार कैसे पूले हैं, इत्यादि के जीवन को अब समझ में आ रहा ना कुछ क्या है, नहीं पूरे वो पूरे कुछ मजा ही नहीं आता। जिनके हिये में ज्ञान तिन्हे ही को निर्वाण, कहते जिनके हृदय में ज्ञान है उनको ही मुक्ति की प्राप्ति होगी। निर्वाण माने मुक्ति, जिनके हिये में ज्ञान तिन्ही को निर्वाण, उनको ही मुक्ति है। और ये कर्म के कर्ता है ना, क्रियाकांड के कर्ता, यहां वो कर्म माने वो ज्ञानावरणादि कर्म नहीं लेना, क्रियाकांड के कर्ता हैं ये, तो भ्रम में भूले हैं, ये भ्रम में पड़े हुए लोग हैं, भ्रम में भूल गए हैं तत्व को, इन्हें ये मतलब तत्व ज्ञान इनको नहीं है। कैसे हैं जो कर्म के कर्तार भ्रम में भूले हैं। अब एक दफे और पढ़ लो, के ही क्रूर कष्ट सहे, झूले हैं, पूले हैं, बघूले हैं और भूले हैं, ना। चलो आगे दूसरा, लीन भयो व्यवहार में, आज के भक्तों का चित्र उनने 400 वर्ष पहले खींच दिया। उनके जमाने में भी ऐसे भगत रहे होंगे, उनने तो उन्हीं का चित्र खींचा है, क्योंकि 400 बरस में दुनिया बदली नहीं, वैसी की वैसी है, कह रहे हैं ना, इसलिए आवश्यकता भी वैसी की वैसी है। देखो क्या लिखा, कि लीन भयो व्यवहार में, ये जीव व्यवहार क्रियाकांड में लीन हो गया है, और उकत्ति न उपजे कोई, इसके दिमाग में कोई युक्ति उपाय समझ में नहीं आता, करें क्या। उकत्ति माने युक्ति, युक्ति माने उपाय, इसके दिमाग में उपजती नहीं है कि क्या करें, धर्म करना है तो क्या करें, धर्म करना है तो क्या करें। उकत्ति न उपजे कोई, यानी इसके दिमाग में ऐसा कुछ समझ में ही नहीं आता क्या करें धर्म के लिए। धर्म करने की भावना होती है लेकिन क्या करें, अब रिटायर्ड हो गए, अब कुछ काम नहीं है, अब क्या करें, धर्म करना है लेकिन क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है। देश सेवा करो, समाज सेवा करो, ये करो वो करो, इसलिए कुछ ना कुछ चल जा बेटा सूली पे, भला करे भगवान, कहीं ना कहीं चल जाते हैं, है ना। क्या कहते हैं, उकति ना उपजे कोई, उकति माने युक्ति उपाय, उपजे माने हृदय में समझ में नहीं आता क्या करें। तो फिर एक ही रास्ता है कि दीन भयो प्रभु पद जपे, हाँ भगवान ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। वो कहते हैं नहीं करता हूं मैं, कह चुका हूं समोसा में बैठ के गंगा देव की उपस्थिति में, मैं तुम्हारा कुछ करने वाला नहीं हूं। जब मैं ये कहता हूं तो लोग, बहुत लोग मेरा विरोध करते हैं। जब वो भजन गाते हैं ना, हे पारसनाथ तेरे ही भरोसी मैंने नैया डाल दी मझधार में, तो मैं उसे प्रेम से कहता हूं, भैया तूने सचमुच डाल दी क्या, कि भगवान के सामने कह ही रहा है कि सचमुच डाल दी है क्या भगवान के भरोसे, यदि डाल दी है तो गारंटी से डूबेगी। कम से कम एक वो है ना, वो क्या बोलते हैं जो मल्ला है, उसके भरोसे डालता तो कदाचित पार हो सकता था, लेकिन पारसनाथ के भरोसे डाली है तो गारंटी से डूबेगी, क्योंकि वे मोक्ष छोड़ के तेजी उसको संभालने आने वाले नहीं, किसी को भेज देंगे, किसी को भेजने वाले नहीं, ये पक्की गारंटी समझना। ये दो बात में तो पक्की है 100%। अब कोई आ जाएगा देख के, तुझे धारसा धर्मी देख के, तो वो भगवान पारसनाथ का उसमें कुछ योगदान नहीं है। क्या क्या लिखा, देखो दीन भयो प्रभु पद जप, अब दीन हो गए भगवान के सामने जप करता है, हाय पर जोड़ता है, अब तेरी दीनता क्या काम आएगी, कह कि मुकति ना कहां थे उसको मोक्ष कैसे होगा, कितनी करुणा है ये। बनारसी दास कहते हैं कि मैं समझ नहीं, मोक्ष कैसे मिलेगा, भगवान के सामने भीख मांगते हुए देखकर लोग महाराज जी को बहुत करुणा आई। लेकिन एक जगह तो है करुणा उपजे जोई, श्रीमद का है क्या लगा बोलो पूरे छंद बोलो हाँ। बाह्य क्रिया में राजता जो ही कोई क्रिया गदर धर रहा कर मुझे तो हृदय में करना आती क्या करें ज्ञानी जन क्या कर सकते हैं बोलिए कह भी नहीं सकते। ये तो अपनी सभा है टोडमल स्मारक भवन है इसलिए अपन इतने कह रहे बाहर कहना ही मुश्किल है समझ रहे ना। दीन भयो प्रभु पद जपे मुकति कहां सो होए मतलब होने का सवाल ही नहीं है। प्रभु सुमरो पूजो पढ़ो करो विविधि व्यवहार तुम्हें जो दिखे तो करो प्रभु को स्मरण करो पूजा पढ़ो और प्रकार का व्यवहार जो कुछ करना हो करो लेकिन एक बात समझ लो कि मोक्ष रूपी आत्मा तो ज्ञान से मिलेगा इनसे मिलने वाला नहीं है। कितने स्पष्ट शब्दों में ये बात उन्होंने लिखी है। अब यो अगला छंद पढ़ो ज्ञान बिना शिव पंथ न सूझे असली तो उनको इतनी कहनी है कि ज्ञान के बिना मोक्ष का मार्ग तुझे दिखाई नहीं देगा तो चलने की बात कहां है। लेकिन वो उन्होंने सात उदाहरण खड़े किए उसके लिए इसे बोलते हैं मालोपमा जो उपमा है ना उसके समान तो माला खड़ी कर दी पूरी एक उपमा नहीं दी माला की माला खड़ी कर दी। काज बिना न करे जिए एकदम कोई महत्वपूर्ण काम नहीं हो तो कोई कुछ करता है प्रसाद करता है कोशिश करता है कोई काम नहीं हो तो कोई कोशिश नहीं करता। काज बिना न करे जिए उद्यमन जीव उद्यम नहीं करता है और लाज बिना रन माही न जूझे। अब ये लाज बिना कैसे माने स्वाभिमान पर चोट पड़े नहीं पड़े देश का स्वाभिमान समाज का स्वाभिमान तो मुहब्बत में कोई लड़ना नहीं चाहता है। रन में यदि जूझता है तो अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए माने शर्म की पोजीशन न खड़ी हो जाए लज्जित न होना पड़े। वो डील बिना न सदैव परमारथ दुनिया में कहते हैं ना क्या काया राखे धर्म शरीर माध्यम खड़ू धर्म साधनम वो सब लोक के उदाहरण दिए हैं सब वो नहीं मानते हैं कि शरीर से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वो तो कहते जगत में जैसे ये मान्यताएं मानी जाती हैं कि डील बिना न सजे परमार हमारी तो शक्ति नहीं रही पहले तो हमने बहुत उपवास किए पहले तो हमने बहुत पूजा पाठ किए पहले तो हमने छठे चक्कर लागे प्रदक्षिणा दी अब हम तो चले ही नहीं जाता है माने अब धर्म नहीं हो सकता माने धर्म बहुत किया तुमने धर्म पर अब नहीं हो सकता। तो लोग कहते हैं क्या कि ना तुमने बहुत कर ली ना तीर्थ यात्राएं कर ली बहुत हो गई अब इतना बहुत है। यानी सवाल इसका नहीं है कि वो बहुत है कि नहीं है वे दोनों आदमी उस कोई धर्म मान के बैठे हैं दुख इस बात का है। सील बिना सत्य सोना अरूझे जब तक सील नहीं हो सत्य के आश्रय की प्रीति नहीं हो तो सत्य में नहीं उलझेगा। नेम बिना न लहे निश्चय पर और जब तक नेम मैंने प्रतिज्ञा है संकल्प करके कि मुझे तो ये काम करना ही करना है जब तक नहीं उसमें जुटेगा तो निश्चय की प्राप्ति नहीं होगी। और प्रेम बिना रस रीति न बूझे अंदर में प्रेम नहीं जगेगा तो जो श्रृंगार रस है उसकी जो रीतियां हैं उनमें कैसे आएगा। और ज्ञान बिना न थमे मन ध्यान के बिना मन की गति नहीं रुकती है ध्यान को भी इनने उपमा में लिया और कहना क्या है, उसी प्रकार ज्ञान बिना सिर पंथ न सूझे, मुक्ति का रास्ता ही पता नहीं चलेगा। चलो आगे बढ़ो। अध्यात्म शैली में आने वाले लोग ही ज्ञान के सत्य ज्ञान को पाएंगे। ये अध्यात्म शैली क्या है, जैसे आजकल जी अपने विद्यालय खुल गए ना, बनारसी दास के टोडामल जी के जमाने में सारे देश में ऐसी शैलियां चलती थी, जयपुर में भी बहुत शैलियां थी, ये हमारे आने तक भी थी, लेकिन वे शैलियां बदल करके अध्यात्म से हटकर फिर पूजा पाठ वाली हो गई थी, अब भजन वाली होंगी, क्योंकि वो अध्यात्म की शैली चलाना तो बनारसी दास टोडामल जैसे विद्वान हों तो अध्यात्म की शैली, शैली माने पाठशाला समझ लो, शैली माने अध्ययन केंद्र, जहां सुबह शाम रोजाना बैठ के दो दो घंटा और एक रुचि वाले लोग इकट्ठे बैठ करके और वो अध्ययन करते थे, उस शैली बोलते थे। बनारस में थी एक शैली, एक यहां जयपुर में थी, सांगानेर में थी, कामा में थी, ऐसे कई जगह जगह शैलियां थी, जो उन्हें अध्यात्म शैली बनारसी दास के जमाने में जो वहां पर ताजगंज में थी ना आगरा में, जो अध्यात्म शैली के नाम से बनारसी दास जी की, तो उसकी चर्चा उन्होंने की है कि उस शैली के बिना ये काम नहीं होगा। तो हमने जो उस शैलियों के अवशेष यहां जयपुर में आते आते देखे, अभी पता नहीं वो कितनी चलती हैं कि नहीं चलती हैं, क्योंकि 10-20 साल से मेरा संपर्क नहीं है उन लोगों से, हैं अभी चलती हैं क्या तारातन जी? लेकिन हम जब वहां बड़े मंदिर में प्रसंग करने जाते थे तो हर संडे के दिन कहीं ना कहीं जाकर के रात भर रहते थे किसी मंदिर में, या आसपास के जो मंदिर होते थे ना जयपुर के सामने, और वहां तो हमारा पहले प्रवचन कराते थे और फिर बाद में भजन चलते थे। भजन का भी एक सिस्टम था, हजूरी भजन और आध्यात्मिक भजन और उपदेशी भजन, तीन तरह के भजन होते थे। नहीं आया समझ में क्या होता होगा। पहले हजूरी भजन, हजूरी भजन में भगवान के सामने उनकी स्तुति करना, तो वो सामने भगवान की मूर्ति के सामने बैठते, कुछ रख देते और फिर वो भजन बोलते, भगवान की भक्ति के होते, जैसे अपन भक्ति बोलते हैं ना शाम को जाते हैं मंदिर में। फिर उपदेशी भजन, फिर एक है कि ये संसार असार है, इस संसार में तुम भटक रहे हो, आत्मा तुम समझते क्यों नहीं हो, ये उपदेशी भजन। फिर जब वो उपदेशी भजन होता तो भगवान का के सामने पर्दा लगा दिया जाता था, अभी भी होता होगा, पर्दा लगा देते थे तब वो भजन बोल सकते थे, यदि भगवान के सामने बैठे हैं वो भजन नहीं बोल सकते, जो पर्दा लगा दिया और फिर वो भजन बोलते थे, उपदेशी भजन जिन्हें बोलते थे। फिर उसमें समझ लो अध्यात्म भजन भी आते हैं कि आत्मा जैसे जी सब ये ठंड बोल सकते हैं ना, तो ऐसा तो नहीं भगवान के सामने पहले कि तेरी भक्ति से कुछ नहीं होता तेरी तो ऐसा यहां होते थे, अपने स्मारक में भी कराते थे, और लगभग हर संडे को शनिवार की रात को हम जाते थे, और संडे की सुबह तक रात में वहीं सोते थे, कभी कभी घर वापस आ जाते थे, सब लोग तो वहीं सोते थे, रात भर चलाते थे, कभी हम प्रवचन करके एक घंटा दो घंटा बैठ करके फिर आ जाते थे, और गोदका जी अपनी गाड़ी से ले जाते थे, गोदका जी शामिल होते थे, और ऐसा सिलसिला 10-15 साल 20 साल तक चला। फिर ये परिश्रम के बाद में ये भी होती थी गोठ हैं, ये तो होगी दवाई की काय की शैली, और गोठ हैं वो खाना पीने की, तो हर संडे के दिन वो गोठें होती थी, तो आज इस बगीचे में, कल उस बगीचे में, परसों उस बगीचे में, 10-20 आदमी मिलकर, यानी दुकानें ऐसी थीं जो गोठ का सामान की, अभी भी होंगी घी वालों के रस्ते में, है ना, जहां अकेला गोठ का ही सामान मिलता था, और गोठ के सामान रखने से ही समझ लो उनकी पूरी आजीविका चलती थी, धंधा चलता था, चूरमा बाटी बस यही ज्यादा बनती थी, इसी तरह के वो सब नक्की थी। तो देखो उसकी बात है, अध्यात्म शैली ज्ञाने उदय जिनके घटे अंतर है, जिनके घट हृदय के अंदर ज्ञान की महिमा जगी है, ज्ञान जागृत हुआ है। ज्योति जगी मते होत न मैली, ज्ञान की ज्योति जग गई इससे उनकी बुद्धि मैली नहीं होती है, विषय कसाई की तरफ नहीं जाती है। बाह्य दृष्टि मिटी जिनके ही है, बाह्य दृष्टि जिनकी मिट गई है जिनके हृदय में से। अध्यात्म ज्ञान है कला, आत्म ज्ञान है कला विधि फैली, आत्मज्ञान की कला उनके हृदय में विधिवत फैल गई है। तेज अड़े चेतन भिन्न लखे, ऐसे जीव शरीर को जुदा चेतन आत्मा को जुदा देखने वाले हैं। सुविवेक लिए परखे गुण थैली, और विवेक से गुणों की थैली जो भगवान आत्मा है उसको परखते हैं। तेज जग में परमारथ जान, वे ही परमारथ मन शुद्धात्मा को जानते हैं। गहें रुचिमान अध्यात्म शैली, ऐसी अध्यात्म शैली के लोग उस आत्मज्ञान को प्राप्त करते हैं। और पढ़ लेता हूं मैं इसका अर्थ, कुछ रह गया होगा तो। जिनके अंतर में सम्यक ज्ञान का उदय हो गया है, जिनकी आत्मज्योति जागृत हो गई है और बुद्धि विकृत नहीं होती निर्मल रहती है, जिनकी बाह्य पदार्थों में एकत्र बुद्धि समाप्त हो गई है और आत्मा का ध्यान करने की कला की विधि जिन्हें ज्ञात हो गई है, जो जड़ो चेतन को भिन्न भिन्न देखते हैं, जो विवेक के धर्म जानते हैं, प्रेमी ज्ञानी जीव जगत में परमार्थ मन भगवान आत्मा को जानकर उसमें ही अपनापन स्थापित कर उसे रुचि पूर्वक ग्रहण करते हैं, ये इसका छंद का अर्थ है। इस प्रकार आरंभ के दो दोहों में भी यही कहा गया है कि पूजा भक्ति आदि व्यवहारिक क्रियाकलापों से आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि आत्मा तो अनुभव गम्य है। और तीसरे सवैया में अनेक उदाहरण देकर का मार्ग दिखाई नहीं देगा। सवैया में यह कहा गया है कि विवेक के धनी अध्यात्मी ही आत्मा को प्राप्त करते हैं। देखो ये पांच लाइनों में जितने हैं ना छंद, कितने छंद हो गए, चार एक पांच, पांच छंदों का सार पांच लाइनों में आ गया। इस प्रकार उक्त छंदों में एकमात्र यही स्पष्ट किया, अभी पांच का सार भी एक लाइन दो लाइन में। इस प्रकार उक्त चारों छंदों में एकमात्र यही स्पष्ट किया गया है कि आत्मा की प्राप्ति तो आत्मज्ञान आत्म सिद्धांत होती है। देखो इसे बोलते प्रेसी, मैंने इतने का पूरे का सार पांच में लिखा और पांच का सार भी दो में लिखा। मैंने हर जगह हर एक छंद में इसमें ऐसा किया है, हर एक गाथा में, कि जिससे आपको उसका सार पूरा ख्याल में आ जाए। क्योंकि पहले वहीं क्यों नहीं, वहां नहीं लिख सकते, क्यों कि वहां उन शब्दों पर ध्यान रख देना पड़ता है, उनके अनुसार अर्थ लिखना पड़ता है, बंधे रहते हैं। जब थोड़े खुलते हैं तो फिर